ਕਿਸਕੋ ਰਹਿਣਗੇ?
SNS ਲੋਅਰਸ ਕੋ ਇਨ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ SNS ਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।
ਤਿਆਰ ਹੋ।
हाँ, टीम मैच पॉइंट और ये आवाज भी है तैयार। PSL 2020 की खुसूसी नशियात के साथ देखिए मैच पॉइंट डॉक्टर अदनान के साथ लाइव रोजाना रात 9 बजे। तो तैयार रहें, ये आवाज टीवी पर, फेसबुक ये आवाज और eawaz.com।
ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਉਸ ਦੀ।
आपको उसे कौन सी गाली वापस देनी चाहिए, शरीयत क्या कहती है, दिस इज द टॉपिक। परवेज साहब क्या ख्याल है आपका? आई बिलीव दिस इज अ वैलिड टॉपिक।
जी सैमसन भाई, ये क्योंकि हमारे माशरे का हिस्सा है
जी,
ये गाली ना
जी,
और हमारे पाकिस्तान में ये बहुत होता है,
और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं परवेज साहब, हर जगह होता है राइट, लेकिन ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है और बहुत अहम हिस्सा है ये।
जी जी बिल्कुल,
अगर हम गाली किसी को नहीं देते तो कोई हमें गाली देता है
जी,
राइट
जी।
तो ये हमें बहुत से जो शरई मसाइल है उसके बारे में हम देखते हैं, लोग बात करते हैं राइट
जी,
मुख्तलिफ शरई मसाइल है तो ये भी, लेकिन ये मसला मैंने अभी तक मेरी नजर से नहीं गुजरा कि अगर कोई, हाँ जी, इस टॉपिक पर बात नहीं कि अगर कोई आपको मां की गाली दे तो आपको उसे कौन सी गाली देनी चाहिए, अभी किसी, अभी तक मेरी नजर से किसी मुफ्ती या किसी जो जो शरीयत का जो आलम है उस का मुझे अभी तक इस टॉपिक के ऊपर कोई जवाब मैंने नहीं देखा, तो मैं समझता हूं कि इट इज वैलिड टॉपिक है
जी।
उसकी वजह जैसे आपने कहा कि मां बहन की गालियां जो है वो
हमारे माशरे का हिस्सा है,
दुनिया का हिस्सा है राइट, इंसानी मुआशरे का हिस्सा है
जी,
पाकिस्तानी मुआशरे का भी हिस्सा है और दूसरे मुआशरों का भी हिस्सा है, लेकिन हिस्सा जरूर है। तो आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि अगर कोई आपको मां की गाली दे तो आपको उसे कौन सी गाली देनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए सोचिए इस टॉपिक के बारे में और आप अपने ऊपर थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए, क्या आपने कभी किसी को मां की गाली दी है?
बल्कि बल्कि सैमसन में अगर कोई आदमी इस पे अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले कोई अपना इनपुट देना चाहे तो अभी वो कॉल करके हमें बताए कि उसका क्या जवाब होगा, अगर किसी को माँ की गाली दी जाए तो वो कौन सी गाली उसको वापस दे और क्या करे, तो मेरे ख्याल से इट विल हेल्प, थोड़ा ओपिनियन भी हमें मिल जाएगा पब्लिक।
अगर कोई कॉल करना चाहता है तो दैट्स ऑलवेज गुड, हमारा नंबर तो सबके सामने ही है 001-888-888-7114 हमारा नंबर है। अगर आप प्रोग्राम के दौरान अपनी इनपुट देना चाहते हैं कि आपका क्या ख्याल है कि अगर कोई आपको मां की गाली दे तो आपको उसे कौन सी गाली देनी चाहिए, है ना प्रोफेसर? ये अगर हमारे बहन भाई सुन रहे हैं, अगर आपका कोई इनपुट है इस पर तो आप हमें जरूर कॉल कीजिए। स्टूडियो का नंबर तो आपको पता ही है 001-888-888-7114 ये स्टूडियो का नंबर है, इस पे कॉल कीजिए और हमें बताइए अगर आप बताना चाहते हैं, अगर नहीं तो इट्स ओके, आप हमारी बात सुन लीजिए। अगर कोई आपको मां की गाली दे तो आपको उसे कौन सी गाली देनी। अब ये सवाल पैदा होता है कि आपने ये टॉपिक क्यों पिक किया, है ना परवेज साहब?
जी
आपका भी ये सवाल था, यही तरह सवाल परवेज साहब आपका,
मैंने भी आपसे पूछा था जी
ये टॉपिक क्यों। अब परवेज साहब एक बात जो हमारे मुआशरे में हो रही है, खुलेआम हो रही है इंसानी मुआशरे में, और हम उस पर बात ना करें राइट, ये मुनासिब नहीं है राइट, हम बाकी सारी बातों पर, बाकी सारे मौजूआत पर हम बात कर लेते हैं माफी, लेकिन ये बहुत अहम मसला है कि मां की गाली अगर कोई दे, और हमने आई पिक्ड ऑन पर्पस मां बहन की गाली भी हम कह सकते हैं, इसको ऐड कर लीजिए मां बहन की गाली कह लीजिए, लेकिन आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन वन थिंग, अगर कोई आपको मां की गाली दे तो आप उसे कौन सी गाली देनी चाहिए। और ये मसला इतना छोटा मसला नहीं है परवेज साहब, इस एक बात से लोगों की जाने भी गई है सिर्फ इस बात से परेशान। तो इसको आप मामूली मत समझिए, ये जो मां बहन की जो गाली है, गाली देने से कई ऐसी मिसालें आपको पता होंगी, हमें पता है कि गाली देने से झगड़ा इतना बड़ा कि बात इतनी सीरियस हो गई कि फिर उसको संभालना मुश्किल हो गया और उसका नतीजा बाज़ का इंसानी जान के जाया होने तक पहुंच किस सूरत में हमें उसका नतीजा नजर आता है। तो इसको मामूली मत समझिए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको कोई मां की गाली दे तो आपको कौन सी गाली देनी चाहिए, हम इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन अगर आप इस कोई आप
ये मसला मैंने
लेट्स सी तो ये हैंग ऑन अ सेकंड, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वांट टू मॉनिटर दिस मायसेल्फ, बट आई वांट ऑल द मैसेजेस हियर। ओके, इसका एक सादा सा सवाल है परवेज साहब, देखिए इंसाफ के तकाजे के मुताबिक, परवेज साहब इंसाफ के तकाजे के मुताबिक अगर बाइबल में हमें बताया गया है आंख के बदले आंख और इंसाफ का तकाजा यह है कि जितना आपका नुकसान हुआ है उतना उसका मुआवजा आपको मिले, तो इंसाफ के तकाजे के मुताबिक अगर कोई आपको मां की गाली दे तो उसे वापस, परवेज साहब इंसाफ का तकाजा तो ये कहते हैं ना
मां की गाली देनी
चाहिए।
हम ये
नहीं कह रहे, अभी हमने मसले का हल तो बताया दिया आपको, ये शरई मसला है और एक शरीयत के आलम बैठे हुए हैं परवेज साहब और दूसरा आलम जो है शरीयत का मैं हूं, और मैं शरीयत का आलम हूं, मैं कहता हूं मैं आलम हूं शरीयत का।
अच्छा
परवेज साहब, और आप भी आलम है, आपको बताता हूं कैसे आप आलम है शरीयत के, ये एक अलहदा मसला है। लेकिन शरीयत का आलम बनने में परवेज साहब आप, मैं आपको बताऊं शरीयत का आलम बनने में इतना वक्त लगता है जितना चुटकी बजाने में लगता है। बहुत से आपको शरीयत के आलम आएंगे परवेज साहब और आपसे कहेंगे कि हमने इतने साल जो है वो ये किया, राइट, इतने साल हमने माफ कीजिए
सैमसन भाई, ये जो आपने अभी बात कर दी ना जी, ये बहुत डीप बात कर दी आपने। अब आपको इस बात को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, जब आप कहते हैं कि आप भी शरीयत के, मैं भी शरीयत, इसको अब आप पूरा एक्सप्लेन करके आप दूसरे टॉपिक पे जाए, वरना हम आपकी क्रेडिबिलिटी पे तो शायद एतराज करें
जी,
इस बार
जी, हम करेंगे अब। ओके परवेज, आपने कहा है तो वी विल डू दैट
जी।
एक शरीयत के आलम जो है वो परवेज साहब बैठे हुए हैं और दूसरा शरीयत का आलम जो है वो आपके सामने आपका खादिम मैं बैठा हूं। आपको बहुत से, माफ कीजिए, शरीयत के आलम आपको नजर आएंगे जो कई कई साल अपनी जिंदगी, कई मैंने सुना है शरीयत के आलमों को कि मैंने इतने साल फलानी किताब पढ़ी, इतने साल मैंने फलानी किताब पढ़ी। लेट मी टेल यू, हम आपको शरीयत का आलम बनाएंगे परवेज साहब
जी,
एक चुटकी में
जी,
परवेज साहब चुटकी में जा सकते एक्सलेंट इस जे दैट्स इट। बचपन में जब छोटे थे, जब चुटकी बजानी सीखी थी तो बड़ा वो फख्र महसूस करते थे कि हमें चुटकी बजानी आ गई है, क्योंकि उंगलियां सही काम भी करती थी जब तो, एंड आई थिंक दिस इज ट्रू फॉर एवरीबॉडी। तो हम आपको चुटकी बजाते
आप आलम हो जाएंगे,
आलम बन जाएंगे, ये सिर्फ हम कर सकते हैं, मतलब कि हम आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं। हम कर नहीं सकते, हम आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं, ये आपको कोई और नहीं बताएगा। क्योंकि जब आप को ये बता दे कि आप चुटकी बजाते आलम शरा के बन सकते हैं परवेज साहब, तो फिर वो जो शरीयत के आलम है उनका क्या होगा परवेज साहब, उनका कारोबार बंद, उनकी रोजी रोजगार बंद हो जाएगा,
दुकानें
बंद हो जाएगी। बाज़ुकात जो शरीयत के आलम है वो बाज़ुकात, सबकी बात नहीं कर रहा है, वो
शरीयत को सजियों के पेश करते हैं
जी, वो अपनी दुकानें चमकाने के लिए शरीयत को कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं। मैं आपको बताऊं, शरीयत का आलम बनने के लिए परवेज साहब चुटकी बजाते सिर्फ दो चीजें आपने याद रखनी है, दो चीजें, और ये शरीयत के सबसे बड़े आलम दुनिया में, शरीयत का सबसे बड़ा आलम दूसरा है, जिससे बड़ा आलम मैंने अपनी मैंने कहीं नहीं देखा, और उसका नाम है मसीह यस्सु। हमारे मुसलमान बहन भाई हजरत ईसा के नाम से भी जानते हैं उनको, शरीयत के सबसे बड़े आलम। और उन्होंने कहा कि सारी शरीयत का दारोमदार दो हुक्मों पर है, तू खुदा से मोहब्बत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मारिन मोहब्बत रख। अब मुझे परवेज साहब बताइए कि इस इल्म के लिए, ये आलम बनने के लिए आपको कितने साल लगेंगे परवेज साहब, चुटकी बजाते हुए खुदा से मोहब्बत कीजिए और
अपने समझ में आने लग जाए।
एग्जैक्टली, सारी शरीयत पर खुद ब खुद
सारी शरीयत
राइट
शुरू
तक। अगर मैं ये कहूं परवेज साहब, ठहरिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं ये कहूं कि जी मेरा नाक बह रहा है और बाकी नजला मुझे थोड़ा लगा हुआ है, मेरे बच्चों को थोड़ा नजला था उससे मुझे हुआ है, अगर मैं ये कहूं कि मेरे बच्चों को सॉरी कि मुझे नजला लगा हुआ है, तो नाक साफ करने का शरई तरीका क्या है परवेज साहब, आप क्या कहेंगे? है ना भाई, अगर शरीयत सारे मसाइल का हल है, है ना, हर चीज आपकी जिंदगी का एक, अगर शरीयत आपकी जिंदगी क्या कहते हैं उसको, एक मुकम्मल जिंदगी का अहाता करती है, तो फिर शरीयत को यह भी बताना चाहिए कि नाक कैसे साफ कर। मैं अगर मैं यूं करता हूं, ये मेरा उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ से या सीधे हाथ से, आप बुरा मत बनाइएगा। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, वी हैव हर्ड, आई हैव हर्ड पीपल टेलिंग अदर पीपल, ऐसी ऐसी बातें वो बताते हैं कि जिनको सुनकर शर्म आती है, शरीयत के बारे में, शरीयत का नाम लेकर, कि शरीयत ये कहती है कि ऐसे करो, इस तरीके से करो, है ना,
ऐसे दोनों
एग्जैक्टली। तो मेरा मतलब ये है कि अगर ये तो शरीयत को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया हुआ है लोगों ने, बनाएंगे तो उनकी दुकान चलेगी, राइट। सो हमने आपको शरीयत का आलम बना दिया है चुटकी बजाते हुए, और ये सबसे बड़े शरीयत के आलम ने ये हमें बताया है, उनकी यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये बताया है कि दो हुक्म है, ये सारे शरा के जो आलम है इनको पीछे कर दो, इनकी नौकरियां हैं उस चक्कर में ये लगे हुए हैं, खा वो पादरी हो, खा वो माफ कीजिए, खा वो मौलाना हो, खा पंडित हो, है ना, अपने इनके काम चल रहे हैं बहुत से लोगों के, सबके नहीं। मौलाना ईदी जो है, मैं समझता हूं वो शरीयत के आलम थे,
शरीयत का
वो शरीयत के आलम थे मौलाना, तो मैं मौलाना, आई रिस्पेक्ट मौलाना, राइट, हमारा मौलाना, सबका मौलाना, मौलाना ईदी, राइट,
जिसको हमने अपनी आंखों से शरीयत को
अमल करते हुए, वो शरीयत जो मसीह यस्सु ने बताई
जी,
मसीह यस्सु, आई बिलीव, आई विश, बात लंबी हो जाती। तो शरा का आलम हमने आपको बना दिया चुटकी बजाते हुए, खुदा से मोहब्बत कीजिए, खुदा के लोगों से मोहब्बत कीजिए, उसके बाद आप उंगली ऐसे डालिए या ऐसे डालिए, डजंट मैटर, इट डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज यू आर लविंग योर ब्रदर। परवेसा बाइबल हमें बताती है, अगर तेरी किसी बात से तेरे भाई को ठोकर लगती है तो तू ना कर, है ना। अगर मैं परवेज साहब जोर से नाक साफ करता हूं, राइट, जोर से, और कोई भाई खाना खा रहा है, उसका दिल खराब होता है यार ये है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए? शरीयत मोहब्बत की शरीयत क्या बताती है? I should not do it, right? मुझे नहीं करना चाहिए, सिंपल। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई PhD करने की जरूरत। Everybody can become एक शरा का आलम बन सकते चुटकी बजाते हुए। नहीं समझ आपको मेरी बात?
बल्कि सैमसन भाई इतना क्लियर लिखा हुआ है, जब आप बात करते हैं तो वो जो किताब मुकद्दस की आयतें मेरे सामने आ जाती हैं और मुझे अच्छा लगता है जब ये खुदा की तरफ से ये आयतें आती हैं। क्या है कि अगर तेरे खाने से तेरी खाने से अगर किसी को तकलीफ होती है तो तू उस वो खाना बंद कर दे जिससे उसको तकलीफ होती है, क्योंकि तू ऐसा करेगा तू ऐसा नहीं करेगा तो तू उसको मसीह में हलाक कर दे।
एग्जैक्टली, दैट्स दिस। और इसी से मेरे जहन में एक बात आई परवेज साहब, पाकिस्तान में अभी कुछ अरसे के बाद रोजे शुरू होने वाले, रमजान शुरू होने वाला है
जी।
एज ए क्रिश्चियन व्हाट इज माय ड्यूटी टुवर्ड्स माय मुस्लिम ब्रदर्स इन पाकिस्तान, आप मुझे बताएं। अगर हमारे खाने से उनका दिल दुखता है, वी शुड नॉट डू इट।
लिखा हुआ है हमारी
किताब में लिखा हुआ
कहते सबको।
तो मैं अपने मुस्लिम अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों से ये कहता हूं कि अगर आपके खाने से एक मुसलमान बहन या भाई का दिल दुखता है या उनके जो भी आप कह लीजिए, तो मसीह यस्सु की ये तालीम ये है, जीसस क्राइस्ट जो शरा के सबसे बड़े आलम है, दो हुक्मों में शरीयत को समो दिया, खुदा से मोहब्बत रखो, अपने लोगों से मोहब्बत रखो, एंड ऑफ द स्टोरी, घर जाइए, डिग्रियों की जरूरत नहीं है आप की। जी प्रोफेसर जी, आपने क्या कहा?
समंदर को मसीह ने कूजे में बंद कर दिया।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और प्रोफेसर मैं भी मैं ज्यादा गालियां तो नहीं देता था, लेकिन मैं गालियां देता था, राइट? मेरी हर शख्स की ब्रॉट अप, इसलिए कि मैं कोई अब बेहतर हूं, मुझ में दूसरी खराबियां थी, राइट?
मैं बहुत ज्यादा देता था सैमसन भाई,
आप बहुत हाँ, तो मुझ में और खराबियां थी बहुत, राइट? तो जी परवेश साहब, आप गालियां बहुत ज्यादा दिया करते थे। नाउ आई डोंट, मेरे मुंह से अब गाली
मुझे
नहीं निकलती। जस्ट अगर कभी गलती से, आई जस्ट फेल सो बैड एंड सो डर्टी परवेश साहब। आप परवेश साहब, लेकिन जब से आपने मसीह को, वंस यू हैव एक्सेप्टेड जीसस, और मैं आप अब गाली, उसके बाद आप गालियां नहीं देते
सैमसन भाई। रोज में एक नई बात समझ आती है, रोज एक नई तालीम मिलती है। मैं मसीह का स्टूडेंट होके, मैं मसीह का फॉलोअर होके, मैं रोज एक नई बात सीखता हूँ, और आई लव मसीहत में होना। मैं शुक्र करता हूँ कि किसी औरत ने आके मेरे साथ इस खुशखबरी को बांटा, और मैं दिली खुश हूं। और मैं अपने बहनों भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि मसीहत में खुशी है और जिंदगी है, मसीहत में मौत से आपके आप आपको आपको मौत आपसे हटाई गई है।
आई बिलीव दैट इज ट्रू, आई बिलीव दैट इज ट्रू,
यस
प्रवेश साहब। और प्रवेश साहब बहनों भाइयों को पता ही है, बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं, प्रवेश साहब का ताल्लुक हरिपुर हजारा से है, कराची में है प्रवेश साहब, ये ग्रो अप। किसी जमाने में प्रवेश साहब आपका तूती बोलता था पाकिस्तान में, आपकी बड़ी मशहूरी थी पाकिस्तान में, लेकिन वक्त वक्त की बात होती है। लेकिन मैं दोहरा तो मुझे प्रवेश साहब, आप वो शख्स अभी मैं जो बात करता हूँ
उन बातों पे भी,
हाँ जी,
मैं शर्मिंदा हूं अपनी अपनी पहली जिंदगी पे, मैं शर्मिंदा हूं, और मैं खुदा से उन बातों पे माफी मांगता हूं जो मैं पहले किया।
लेकिन प्रोफेसर मैंने सुना है आप ट्रैफिक रोक दिया करते थे सड़क के ऊपर।
रोकी थी
आपने ट्रैफिक, आपको गवर्नमेंट ने कोई कार्ड दिया हुआ था, आप कार्ड दिखाकर आप कहीं भी जा सकते थे, इज दैट ट्रू?
मैं जेलों में भी चला जाता था, जेलों में मैंने बाइबल बांटी
पाकिस्तान में,
पाकिस्तान कराची से।
आपको कोई रोकता नहीं था जेल में जब आप जाते थे?
कोई नहीं रोकता।
किसने कार्ड दिया था आपको?
मेरे पास अनवर وزیر قانون انور کیا میں سے نام نکل گیا
ساری بات ہے, لیکن نواز شریف نے آپ کو کچھ بنایا تھا پرویز صاحب,
اس نے مجھے اسپوکمن بنایا تھا, ان کا سگنیچر انہوں نے جیل میں ایکچولی کورٹ کے اندر مجھے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا تھا.
اچھا اچھا, تو یہ وہ سنہری دور تھا نواز شریف کا اور آپ کا بھی, رائٹ, ایک طریقے سے.
جی,
دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک کہ جب پرویز صاحب کو میں اکثر بات کرتا ہوں پرویز صاحب چپ ہو جاتے ہیں, یہ ان کا بڑا پن ہے, آپ ان کو مطلب یہ ہے نا, اور میں آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, آئی اپریشیٹ ویری مچ پرویز صاحب. تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں, تو شرع کا عالم, تو ہم آپ کو, ہم شرع کے عالم ہے, وی آر, کیونکہ جو شرع کا جو سب سے بڑا عالم ہے مسیح یسوع, انہوں نے ہمیں شریعت سمجھائی ہے چٹکی میں, انہوں نے کہا کہ خدا سے محبت کرو, اپنے جو لوگ ہیں ان سے محبت کرو, یو ول نیور گو رانگ, یو ول نیور ایور گو رانگ. اور جو لوگوں سے محبت جو ہے اس میں مذہب کی قید نہیں ہے, ہندوؤں سے محبت کرنی ہے, مسلمانوں سے محبت کرنی ہے, اپنے مسیحیوں سے, یعنی کہ مسلمانوں سے ہندوؤں سے کرتے رہے, اپنے لوگوں سے لڑتے رہے, رائٹ, مسیحیوں سے محبت کرنی ہے, ایتھیسٹ سے محبت کرنی ہے, احمدیوں سے محبت کرنی ہے, کافروں سے محبت, ایوری باری, رائٹ. اب محبت کا یہ مطلب نہیں ہے, ول کم بیک لیٹر. تو اگر کوئی آپ کو ماں کی گالی دے تو آپ کو اسے کون سی گالی دینی چاہیے, کیونکہ شرعی مسئلہ ہے اور ہم شرع کے عالم ہیں, رائٹ, مسیح یسوع کے اسکول میں ہم نے پڑھا ہے, اور ان کے اسکول میں جاتے ہی انہوں نے چھٹی دے دی اور کہا کہ اب جاؤ کام کرو, ڈگری مل گئی, اور تعلیم انہوں نے صرف اتنی سی دی کہ خدا سے محبت کرو اور ان کے لوگوں سے محبت کرو, جیسا تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں تم ان کے ساتھ ویسا کرو. گولڈن رول, آج بھی دنیا گولڈن رول کے نام سے اس کو جانتی ہے, جو جیسا تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کرے تم ان کے ساتھ پہلے ویسا کرنا شروع کر دو. تو اگر کوئی آپ کو ماں کی گالی دے تو سمپل کیا ہے, اور یہ سب جو پرانی شریعت ہے, اگر مسیح سنا آتے تو پرانی شریعت کو ایکسیپٹ کرنے میں مجھے بہت مشکل ہوتی.
پرانی شریعت میں لڑائی جو ہے وہ ابھی تک لگی رہتی ہے.
Exactly. شریعت جی, اور پرانی شریعت جو ایک سفر ہے, سفر ہے ایک جو منزل پر لے کر آیا اس شریعت سے نکالتے ہوئے جہاں پر مسیح یسوع نے, مسیح یسوع اس کی منزل ہے, اور مسیح یسوع نے شریعت کو مکمل انہوں نے کہا کہ اگر, رائٹ, مسیح یسوع نے کہا دیکھیے ایک نئی شریعت ہمیں دی, تو اب سوال پرانی شریعت کے مطابق اگر کوئی آپ کو ماں کی گالی دے تو آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت, تو ماں کی گالی کے بدلے ماں کی ماں کی گالی. اب جب آپ نے ماں کی گالی دی پرویز صاحب, اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, ہمارے ملک میں ماں اور بہن کی گالیاں ایسے دی جاتی ہیں, اور یہاں پر بھی, یہاں پر بھی میں نے دیکھا امریکہ میں بھی, اٹ از ٹرو, لیکن یہ ضرور ہے میں اس کو سچ بولوں گا, اتنی رفتار سے نہیں دی جاتی جتنی پاکستان میں دی جاتی ہے. یہ دیتے ہیں, رائٹ, اور میں کہنا نہیں چاہوں گا, میں اس کے شارٹ لفظ میں سوچ رہا تھا آپ کو بتاؤں امریکہ کا, لیکن آئی ول ناٹ ایون سے اٹ. ایک سوال آپ پرویز صاحب مجھے بتائیے, ماں کا جو رتبہ ہے آپ مجھے بتائیے کتنا بڑا ہے, رائٹ, آپ اس کو, دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ, مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ساری عورتوں میں سے ہم ماں ہی کو گالی کیوں دیتے ہیں, یہ بڑا سوچنے والی بات ہے, تھوڑی دیر لی سوچی, باپ کو کسی نے گالی نہیں دی, چچا کو گالی نہیں دی, رائٹ, ماں کو گالی کیوں دیتے ہیں, ایک ماں کی گالی کیوں چلتی ہے, تھوڑی دیر لی سوچیے. یہ آپ کو شرم دلانے کے لیے, اور اپنے آپ کو شرم ہے, ہم آپ سے بہتر نہیں ہے, شرع کے عالم ہے ہم ضرور, لیکن آپ سے بہتر نہیں ہے, کیونکہ سکھایا ہم نے نہیں اپنے آپ کو, ہمیں کسی نے سکھایا, اگر وہ نہ سکھاتا تو ہم نہ سیکھتے, تو ہمیں اپنے آپ پہ فخر نہیں. تو ساری عورتوں میں یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ جب ایک ماں کی گالی کے بدلے ایک ماں کی گالی دینی دی جانی چاہیے پرانی شریعت کے مطابق, تو ایک وہ ماں جس کا مرتبہ, رائٹ, تقریباً ہر مذہب میں, رائٹ, اس کا مرتبہ بہت اونچا بتایا گیا ہے. اب یہاں لڑنا نہ شروع, آرگیو نہ شروع کر دیے, ہمارے مذہب میں زیادہ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, زیادہ ہوگا تو ہوگا, ٹھیک ہے, اچھا مان لیا, دیٹس وائی, لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہستی, जिसका मर्तबा इतना ऊंचा है, व्हाई वी पिक हर टू डू यू नो टू यूज बैड वर्ड्स. यही शर्म से डूब मरने का मुकाम है. एक मुआशरा जहां पर मां और बहन की गाली दी जाती है, मैं समझता हूं कि वो मुआशरा एक शैतानी मुआशरा है, खा वो अमरीका होगा, वो पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का. इसका मतलब ये है, या यू हम कह सकते हैं कि वो जिंदगी, वो शख्स जो मां और बहन की गाली देता है, वो एक शैतानी असर के नीचे है. क्योंकि मां और बहन, थोड़ी देर के लिए सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, तो अगर आप मां की गाली के बदले मां की गाली देते हैं, जो पुरानी शरीयत के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए ना, तो आपने दो शैतानी काम कर दिए, राइट. और मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको अगर मां की गाली दे तो आपको कौन सी गाली देनी चाहिए. मैं आपको बताऊंगा, आपको वो गाली देनी चाहिए, मेरा पूरा पॉइंट सुन लीजिएगा. वो ओके, लेट मी चेंज इट. अगर किसी को कोई मां की गाली देता है तो वो कौन सी गाली देगा वापस? वो गाली देगा परवेज साहब जो उसके दिल में है, यही होगा ना, है ना, वो जो उसके दिल में है वही निकलेगा ना बाहर. मसीह यीशु कहते हैं कि बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, तो जो आपके दिल में है वही निकलेगा ना बाहर.
इससे दिल लबरेज है, वही जुबान पे आता है.
एग्जैक्टली. तो जब अगर कोई आपको मां की गाली देगा तो आपके दिल से वही निकलेगा, आपके मुंह से, जो आपके दिल में है. तो अगर आपके दिल के अंदर मां की गाली है तो बाहर निकल आएगी. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, अगर कोई आपको मां की गाली दे तो उसे कौन सी गाली देनी चाहिए? यू टेल मी, आप मुझे बताइए कि उसे कौन सी गाली, मैं पॉइंट बनाना चाह रहा हूं, आप मुझे बताइए उसे कौन सी गाली देनी चाहिए. अगर कोई आपको मां की गाली, तो आप मुझे बताइए उसे कौन सी गाली देनी चाहिए. अगर आपने ये कहा है कि उसे वापस मां की गाली देनी चाहिए, या आपने ये कहा है कि उसे मां की गाली नहीं देनी चाहिए, अगर आपने ये कहा है कि उसे मां की गाली देनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि शैतान ने आप दोनों के ऊपर कब्जा किया हुआ, आपके दिल के ऊपर. अगर आप कहते हैं कि उसको मां की गाली नहीं देनी चाहिए, इसका मतलब है कि आपके अंदर एक कश्मकश है, एक जदोजहद है, अच्छाई करने की आपके अंदर ख्वाहिश मौजूद है. That's what it means. तो आपके दिल के अंदर जो है वो बाहर आएगा. तो कौन सी गाली देनी चाहिए, उससे पहले ये कि आप कौन सी गाली देंगे. आप वो गाली देंगे जो आपके दिल के अंदर है. अब सवाल ये पैदा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल ये पैदा होता है कि हमारा दिल जो है वो क्यों, वाई आवर हार्ट, हमारे दिल के अंदर क्यों गाली देने की जो है वो ख्वाहिश पैदा होती है. इसकी वजह यह है, मैं आपको बताऊंगा और से मेरी बात सुनिएगा, कि हमारे दिल जो है वो खुदा से दूर है. जिस ये जो मसला है गाली देने का, ये इंसान के दिल का मसला है, इंसान के ये दिल का मसला है. आपके मुंह से जो बात निकलती है वो आपके अंदर का पता देती है. और मैं एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव अ क्लीन हार्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट. दे आर पैचेस इन माई हार्ट, राइट. दैट्स वाई बाइबल कहती है कि मैं बाइबल हमें बताती है, बड़ी खूबसूरत आयत है, कि मैं मंजिल पर पहुंचा नहीं हूं, लेकिन मंजिल की तरफ मैं रुक किए हुए भागता हुआ चला जा रहा. और चलते चलते वो पैचेस जो है जो डार्क पैचेस है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। अगर किसी ने ये एक बुक नहीं पढ़ी तो उस बुक को जरूर पढ़िए परवेज साहब, आपको शायद नहीं आपकी नजर से गुजरी, एक बुक है मसीही मुसाफिर। मसीही मुसाफिर इट्स एपिक बुक। अगर आपने पढ़ी है, अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो हमें हुक्म दीजिए, हम आपकी खिदमत में उर्दू जुबान में, यू मस्ट रीड दैट, इट्स एन एपिक बुक मसीही मुसाफिर। तो हम तो जब जो आपके दिल में है वो बाहर आता है, तो अगर आपके दिल में मां की गाली है तो आप मां की गाली देंगे उसको, अगर आपके दिल के अंदर है। तो मसला ये है कि इंसान का जो दिल है, जैसी आपके दिल के अंदर जो सिचुएशन है वैसी आपके मुंह से बाहर आएगी। तो पुरानी शरीयत के मुताबिक, या वो लोग जो इस बात पर यकीन करते हैं आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, उस शरीयत के मुताबिक मां की गाली के बदले मां की गाली ही देनी चाहिए। नहीं समझ, कत्ल के बदले कत्ल, इसलिए अगर कोई कत्ल करता है तो क्या होता है परवेज साहब, राइट, उसको यू नो फांसी की सजा होती है। एंड आई अंडरस्टैंड दिस अ सेपरेट टॉपिक के फांसी की सजा जायज है या नहीं जायज। मैं ये कह रहा हूं कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, ये शरीयत का तकाजा है, पुरानी शरीयत का, राइट। और उसके देने, और अगर आप देते हैं तो आप पुरानी शरीयत के तहत है, और अगर आप गाली मां की गाली के बदले मां की गाली देते हैं तो गलत नहीं करते, पुरानी शरीयत के मुताबिक देनी चाहिए आपको, बल्कि देनी चाहिए आपको। अगर आप नहीं देते मां की गाली तो आप शरीयत इन अ वे पर पूरा अमल नहीं करते, क्योंकि शरीयत कहती है दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। तो मां की गाली के बदले आपको मां की गाली देनी चाहिए। अगर आप नहीं देते तो शरीयत पर अमल नहीं करते, है ना, जो शरीयत का जो उसूल है उसको आप डिनाई करते हैं। लेकिन अगर आप एक नई शरीयत के तहत हैं तो फिर आप मां की गाली के बदले में मां की गाली नहीं देंगे। ये वो शरीयत है जिसके हम आलम हैं, जिसका मैं आलम हूं, और जिसके परवेज साहब, अलामा परवेज साहब है, परवेज साहब और अलामा सैमसन, महागुरु, नहीं महागुरु मैं तो नहीं हूं, राइट, गुरु, राइट, गुरु परवेज साहब गुरु नंबर एक और मैं गुरु नंबर दो। क्योंकि हमारा जो गुरु है महागुरु वो है जिसने हमें शरीयत का आलम बनाया है। तो हम शरीयत के आलम होते हुए, अलामा होते हुए आपको बताते हैं कि जब आप जिस शरीयत के बारे में हम आपको बताते हैं उसके मुताबिक अगर कोई आपको मां की गाली दे तो उसको कौन सी गाली देनी चाहिए, हम आपको बता। परवेज साहब आप कुछ फरमाना चाह रहे थे, क्योंकि आप मौलाना है तो अब मैं फरमाना आपको, अलामा है तो आपको अब मैं इज्जत से बुलाऊं, फरमाना कहूंगा, आप फरमा रहे थे कुछ।
हमारे हमारे गुरु ने
जी,
हमारे उस्ताद ने
जी,
हमारे मसीह ने
जी
हमको ये सिखाया है
जी,
के तेरे अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो और बताने वालों के लिए दुआ करो। तो सताने वाला वो ही है ना जो गाली देता है
जी, बिल्कुल सही है,
ये जाता है
जी,
क्योंकि अगर मुझे कोई गाली देगा तो मुझे दिल में तकलीफ होगी ना, उससे मुझे आया,
बिल्कुल सही बात है।
तो हमें 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 हमारे मसीह ने ये कहा है कि तुम अपने सताने वालों के लिए दुआ करो,
हम इसको पढ़ते हैं, पर आपने कहा वही अल्फाज में बाइबल में आपकी खिदमत में पेश करता हूं, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से, ये हमारे जो महागुरु हैं मसीह यीशु जो हमारी शरीयत के सबसे बड़े आलम हैं, उन्होंने कहा है लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखे उनका भला करो, जो तुम पर लानत करे उनके लिए क्या करो, बरकत चाहो। जो तुम्हारी तहकीर करे उनके लिए दुआ करो। जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करे तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी या काफिर भी ऐसा ही करते हैं, राइट? बल्कि काफिर तो आजकल, चले छोड़े, बाद में बात करेंगे काफिरों की। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है, गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल कर ले, बल्कि सूद के साथ वसूल कर ले, राइट? लेकिन तुम अपने परवेज साहब, मसीह यस्सु, आप हजरत ईसा मुझसे और आपसे कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें आलम बना दिया ना शरा का, तो अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं, शरीयत का आलम बनाने के बाद कहते हैं, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो, और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा। तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुकरों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर, हिला हिला कर, लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अब आप मुझे बताइए परवेज साहब, ऐसी टीचिंग आप मुझे बताइए, निकाल के बता दीजिए कहीं से परवेज साहब, राइट? अब मसीह यस्सु ये कह रहे हैं, देखो कि मैं तुम्हें ये कहता हूं, राइट? मैं तुम्हें ये कहता हूं कि जो तुम पर लानत करे, दूसरे लफ्जों में उसमें मां की गाली भी आ जाती है, राइट? जो तुम्हें बुरा भला कहे, राइट? मसीह यस्सु कहते हैं तुम उनके लिए बरकत चाहो। आई बिलीव, लेट मी गिव यू दिस, अगर कोई आपको मां की गाली, अगर मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर ये फार्मूला काम ना करे, प्रवेश साहब मैं अपना अपना सर मुड़वा लूंगा, अगर से वो सर मैंने पहले वैसे ही मुड़वाना था, चले वो एक साथ आप थी कि अब शेविंग बैठ तो एहसान कर दे तो आपके ऊपर, लेकिन मैं अपना प्रवेश साहब तो कहूंगा अपना सर मुड़वा ले, क्या ख्याल है?
वो खुद ही मानता है यार
परवेज साहब, पूरा होने का एक तरीका, सबसे बड़ा निशान
परवेज साहब खुद ही उड़ते जा रहे हैं।
किसी ने कहा कि सबसे बड़ा निशान ये है बूढ़ा होने का, पता है क्या है? कि आप बूढ़े हो रहे, बाल जहां पर है वहां से निकलकर वहां पर आ जाते हैं जहां पर नहीं होना चाहिए, कानों से निकलना शुरू हो जाते हैं, नाक से निकलना शुरू हो जाते हैं, और जहां पर होने चाहिए वहां से दूर भागते जाते हैं, जहां से नहीं निकलने चाहिए वहां पर निकलना शुरू हो, इसका मतलब आप बूढ़े हो रहे। तो लेकिन परवेज साहब आप जवान है, खूबसूरत है, तो जो मैं आपको बताऊं, मेरा आप नाम बदल दीजिएगा, मेरे मैं अपना सर मुड़वा लूंगा, राइट? मैं अगर कोई आपको मां की गाली दे, अगर कोई आपको मां की गाली दे, आप उससे कहिए आई प्रे फॉर योर मदर, आई प्रे दैट गॉड प्रोटेक्ट योर मदर, आई प्रे दैट गॉड गिव योर मदर अ लॉन्ग लाइफ, मैं तुम्हारी मां के लिए दुआ करता हूं कि तुम्हारी मां को खुदा लंबी उम्र दे, ताकि उसके शफकत का साया, उसकी मोहब्बत तुम्हारे ऊपर हमेशा, उसका हाथ उसकी मोहब्बत का पड़ा रहे। मैं तुम्हारी मां के लिए दुआ करता हूं कि शी लिव्स अ लॉन्ग लाइफ। आई गारंटी यू, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं परवेज साहब मैं मूछे रख लूंगा, मैं दाढ़ी रख लूंगा, अगर ये फार्मूला कामयाब ना हो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मेरे मुंह पर थूक दीजिएगा, यहां तक मैं कहता हूं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये फार्मूला कामयाब ना हो, अगर आज के बाद कोई आपको गाली बकता है, आप उसको कहिए कि तूने मेरी माँ को गाली बकी है, मैं तेरी माँ के लिए दुआ करता हूं। अगर तेरी माँ बीमार है, मैं उसकी सेहत के लिए दुआ करता हूं। अगर तेरी माँ जो है वो परेशान है, अगर मैं दुआ करता हूं कि खुदा उसकी परेशानी को खत्म करे। आई लव योर मदर बिकॉज माँ का रुतबा बहुत बड़ा है। अगर किसी ने बहन की गाली बकी है, आप उससे ये मत कह दीजिए आई लव योर सिस्टर, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। आप यूं कह दीजिए कि मैं तुम्हारी बहन की इज्जत करता हूं, राइट, मैं तुम्हारी बहन के लिए दुआ करता हूं, खुदा उसके साथ रहे। आई जस्ट थ्रो थिंग्स देयर थोड़ा ह्यूमर के लिए, लेकिन द पॉइंट इज दिस, यू प्रे फॉर दोस हु कर्स यू। मैं आपको गारंटी देता हूं, पाकिस्तान अगर ऐसा मुल्क बन जाएगा, मैं आपको बताऊं, अगर आप, लेकिन ये दिल की तब्दीली से होता है, ये वैसे नहीं होता। दैट्स द, ये मसला सबसे बड़ा ये है कि इसके लिए दिल का तब्दील होना बहुत जरूरी है। परवेज साहब, परवेज साहब, आप मुझे एक बात बताइए, जब आप गालियां बकते थे, गालियां निकालते थे, मैं भी गालियां बकता था, गाली बकी जाती है और हम सब गुनहगार हैं। परवेज साहब बहुत प्यार, परवेज साहब आपका, हम एक दूसरे से खुल के बात कर सकते हैं, हमें पता है कि वी लव ईच अदर, राइट। और परवेज साहब को, परवेज साहब वो आदमी है, सेंट्रल जेल कराची में, परवेज साहब सेंट्रल जेल कराची में आपने बाइबलें डिस्ट्रीब्यूट की, और परवेज साहब आप जरदारी जहां पर कैद था वहां पर भी गए थे मेरा ख्याल है, राइट,
दूसरे कमरे में जरदारी साहब
थे। तो वो क्रिश्चियन वहां पर थे जो अपनी इबादत करते थे, और जरदारी क्या कहता था परवेज साहब,
चुप करा दो कहता था,
कहते इनको चुप कराओ मैं सो नहीं सकता।
हाँ,
ओके, तो क्रिश्चियन थे सेंट्रल जेल में, तो परवेज साहब को कहा कि जी जरदारी कहते हैं कि आप शोर करते हैं आप वो, लेकिन परवेज साहब एक बात है, अगर क्रिश्चियन जो है उनके गीत गाने से अगर जरदारी की नींद खराब हो रही है, एज अ लविंग हार्ट वी शुड हैव नॉट डन इट, अगर देखा जाए तो।
लेकिन उनकी उनको और जगह मिलती भी नहीं थी, वो एक ही जगह थी जहां पे उनको सबको रखा हुआ था, तो वहां पे वो आके इकट्ठे होके वो अपनी प्रेयर्स कर सकते थे। अब जरदारी साहब को भी चाहिए था कि थोड़ी देर के लिए अगर उनकी नींद खराब होती है तो वो कौन सा 24 घंटे करते हैं, वो तो सिर्फ इतवार की एक दिन आके वो बेचारे इकट्ठे होते थे और अपनी इबादत किया करते थे, गीत गाया करते थे, खुदा की तारीफ किया करते थे और सबके लिए दुआ किया करते थे, हर क्या, और जरदारी साहब के लिए भी वो दुआ किया करते थे। मैंने खुद इस बात को सुना है उसी महफिल में, मैं बैठ के आया हूँ, मैंने वहां पे तकरीबन 1.5-2 घंटे गुजारे हैं उस इबादत में। तो अब जरदारी साहब को अगर तकलीफ होती है तो थोड़ा सा जरदारी साहब को भी हमारी इनको जबान में कहते हैं दना तला गीटी रख के ना हुआ दना तला गीटी रखनी चाहिए
ऐसी। सही बात है,
जरदारी साहब भी थोड़ा सा अगर बर्दाश्त कर लेते हैं 1-2 इतवार का हफ्ते में एक दिन तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन वो उस वक्त जरदारी साहब थे तो
ऐसा ना अभी पाकिस्तान जैसे जरदारी साहब पकड़ ले हमें
अभी। हाँ,
ऐसा ना आप बातें कर रहे हैं वो नोट कर ले, जब पाकिस्तान जैसे हमें पकड़ ले, आपको ही पकड़ ले मुझे।
जरदारी साहब समझ गए आप बात को कुछ, क्योंकि आप उस स्टेज से जरा उस उम्र के स्टेज से भी जरा नीचे आ रहे हैं, तो अभी वो बातें समझते हैं।
But we love him. We love him. और ये this is तो
अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे खूबसूरत कहा।
जी प्रोफेसर,
देखे सैमसन भाई, मसीह में हर आदमी खूबसूरत है।
क्या बात, क्या बात,
नहीं जरदारी साहब भी खूबसूरत है।
एग्जैक्टली,
हर मौलवी साहब जो हमारी इस बात से नाराज होते हैं वो भी खूबसूरत।
एग्जैक्टली,
आंख में वो भी खूबसूरत।
एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। और परवेज साहब, मैं आपके आई वांट टू शेयर विद पीपल, आप परवेज साहब को एक बार, या परवेज साहब किसने वो CIA वाले आ गए थे आपको पूछने के लिए, नहीं CIA वाले क्या कहते हैं वो, FBI वाले, जब आप उनको कॉल किया था कि सदाम हुसैन को बाइबल भिजवानी है, मैंने जब सदाम हुसैन जेल में था।
जी जी वो मुझ पे ही वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि भाई तुम क्यों मिला रहे हो। मैंने कहा भाई उसको अभी फांसी होने वाली है तो मैं चाहता हूँ कि उसकी जान बच जाए। आई लव हिम। मैं उसको वो सदाम हुसैन ने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया है, बहुत सारा उसके बेटों ने बहुत जुल्म किया है लोगों पे, लेकिन अब वो मरने जा रहा है तो वो आखिरी बार मैं चाहता हूँ कि उसको बाइबल पहुंच जाए, उसको इंजील की खुशखबरी पहुंच जाए। हो सकता है कि वो इंजील पढ़ के अपने खुदा के सामने रिपेंट हो, माफी मांगे और मरने से पहले
हमेशा की जिंदगी उसको मिले,
पाक होके जाए।
राइट एंड द पॉइंट इज परवेज साहब के जब हम गालियां बकते थे पहले राइट तो हमारा राइट दिल की है राइट दिल तब्दील, ये दिल के बगैर ये बात नहीं होती, ये मैं कहना चाह रहा हूं है ना परवेज साहब। आप को जब हम गालियां बकते थे उस वक्त हमें ये पता था कि ये बुरी बात है परवेज साहब, ये आपको तो नहीं था पता, ये तो नहीं कि गालियां बकरे बड़ी अच्छी बात है सर इधर आइए मैं जरा गालियां बकूंगा आपको राइट, आपको ऐसा नहीं, हमें पता था कि गाली बुरी बात है इसीलिए हम दूसरों को बकते थे
जी।
तो ये इंसान इसलिए बुरे काम नहीं करता उसको पता नहीं होता, पता होता है उसके बावजूद करता है
जी।
ये ट्रेजेडी है इंसान की राइट
जी।
उसको पता है बीवी को नहीं मारना गालियां फिर भी करता है राइट। तलाक कौन कहता है तलाक अच्छी बात है, सब कहेंगे नहीं अच्छी बात है फिर भी देते है ना प्रोफेसर। एनीवेज तो जो दिल की जो तब्दीली है उसके बगैर ये काम नहीं होते। एक भाई ने कहा कि भाई ये मसीह यस्सु की जो तालीम है ये तो नामुमकिन है। तो मैंने कहा भाई अगर ये नामुमकिन है राइट ये ऐसे ही है जैसे एक बच्चा है छोटा परवेज साहब, छोटा बच्चा है उसके लिए मुमकिन है कि वो 500 फुट ऊंची छलांग लगा दे, मुमकिन है कि नहीं है उसके लिए? नहीं मुमकिन ना उसके लिए,
नहीं मुमकिन,
मुमकिन नहीं है। तो अगर आपके लिए मुमकिन नहीं है तो आप खुदा से दुआ कीजिए कि वो मुमकिन बनाए इसको, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप मेरा नाम बदल दीजिएगा मैं दाढ़ी रख लूंगा, मूछे रख लूंगा, सर के बाल मिलवा दूंगा, अगर ये बात गलत साबित हो जाए कि अगर कोई आपको मां की गाली दे आप उसकी मां के लिए दुआ करें उसकी सेहत के लिए। मैं कहता हूं ये सिर्फ इस एक बात में पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदलने की ताकत मौजूद है, आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत मौजूद है, पूरी इंसानियत को टर्न अराउंड करने की ताकत मौजूद है। मैं ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में जो बुरे लोग हैं वो चर्चिस को जलाते हैं, चर्चिस में यू गो एंड से वी प्रे फॉर यू, आई मीन ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग दैट, दैट वी हैव टू, वी कैन नॉट जस्ट से ओके कम, वी हैव टू स्टॉप देम, बट से वी प्रे फॉर यू, आई प्रे फॉर योर डॉटर, आई प्रे फॉर योर सन, आई प्रे फॉर योर सिस्टर, आई प्रे फॉर योर मदर, आई बिलीव द वर्ल्ड विल चेंज। अगर इंडिया में, और ये मैं फार्मूला बताता हूं सबको, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो भी इसको अपनाएगा वो, अगर इंडिया में एक मस्जिद की बेहुरमती होती है, करते हैं जब भी हुई है, एंड दैट्स ट्रेजिक, और मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों से कहता हूं अगर आप जो शरा का सबसे बड़ा आलम है मसीह यस्सु, उन्होंने जो शरीयत की जो बात बताई है आप उस पर अमल करें और आप उनके लिए दुआ करें, मैं आपको बताता हूं थिंग्स विल चेंज। ये जो आप जिसको कमजोरी समझते हैं ना ये सबसे बड़ी ताकत है, जब आप गाली के बदले गाली देते हैं आपसे ज्यादा कमजोर शख्स कोई है नहीं, इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस, इट्स नॉट साइन ऑफ स्ट्रेंथ, आई एम टेलिंग यू। और ये उस वक्त होता है जब आपका दिल तब्दील होता है। एक भाई ने, जैसे मैंने कहा, भाई ने कहा कि ये तो हो नहीं सकता, हां क्योंकि आपका अभी तक दिल तब्दील नहीं हुआ है। जब दिल तब्दील होता है परवेज साहब ये बातें खुद ब खुद जाहिर होना शुरू हो जाती है। परवेज साहब की मैं बात इसलिए बार बार कह दूं कि हमारे सामने जिंदा मिसाल है राइट। परवेज साहब मतलब कि मैं सिर्फ इसलिए परवेज साहब आप बता दूं गाली ताकि लोगों को पता चले कि खुदा कैसे तब्दील करता है इंसान को राइट। परवेज साहब जो है आपने मुझे, आई फील बैड but just to show God's power.
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
ਕਾਰ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਟਰ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਰਟੀਕਲਸ ਰੋਲਰ ਸ਼ੇਡਸ ਹਨੀਕੈਂਪਸ ਪਲੀਟਿਡ ਸ਼ੇਡਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ ਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੇਡਸ ਆਊਟਲੈਟ .com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 416-803-1043 416-803-1043 ਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੇਡਸ ਆਊਟਲੈਟ .com
ਕਿਚਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ GK ਗ੍ਰੈਨਾਈਟ ਐਂਡ ਮਾਰਬਲ ਕਸਟਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟਸ ਬਾਰਸ ਵੈਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸਟਮ ਕਾਊਂਟਰ ਟਾਪਸ ਹੋਵੇ ਵੁੱਡਵਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੈਨਾਈਟ ਔਰ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟਾਪਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 4 ਯਾਨੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਰਾਇਟੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਕ ਔਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ 7171 ਟੋਰਬ੍ਰਾਮ ਰੋਡ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ
SNS ਲੋਅਰਸ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ SNS ਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000